नहीं, शंकित अंग है। ठीक है, हमने इस पर लास्ट टाइम भी बहुत डिटेल में चर्चा करी थी कि जिनेंद्र, पहले तो भली भांति हम सात तत्वों का स्वरूप समझे, सात तत्वों में यदि हमको कोई शंका कोई विरोध नहीं लगता हो तो सात तत्व प्रयोजन भूत है। प्रयोजन भूत वस्तु में यदि हमको शंका नहीं है तो बाकी जो कुछ भी अप्रयोजन भूत है, सूर्य और चंद्रमा जम्बूद्वीप में सबसे बीच में सुमेरु पर्वत है, उसके परिक्रमाएं देते हैं कि नहीं देते, ऊपर चार प्रकार के देव हैं तो वो हैं कि नहीं है, नहीं है अनुत्तर है कि नहीं है, सिद्धिशिला है कि नहीं है, सात पृथ्वियां आठ, ये सारी चीजें हैं और नहीं भी हो, उससे हमारे वर्तमान तात्कालिक जीवन पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जीव के आश्रय बंध स्वरूप निर्जरा मोक्ष तत्व है, कर्मों का आना है तो है कि नहीं, जाना है तो कैसे है, निर्जरा होती है तो कैसी होती है, ये हमारे काम की चीजें हैं, प्रयोजन की चीजें हैं। यदि हमें इनमें बिना किसी विरोधाभास के, ये हमको तार्किक धरातल पर हम इसको समझ पाते हैं, तो फिर उनके कहे हुए जो कुछ भी तत्व हैं, प्रयोजन भूत या अप्रयोजन भूत, उसमें वो शंका नहीं होनी चाहिए। बराबर, कि बिना परीक्षा के नहीं आएगा कि नहीं, जो कुछ बोला भगवान ने वो मान लिया, नहीं। प्रयोजन भूत तत्व जो हमारे काम की चीज है, जो हमारे प्रयोग, जिससे हमारा ये वर्तमान जीवन प्रभावित होता है, इस ये सारे तत्वों की तो परीक्षा होगी, और एक बार इनकी परीक्षा हो गई तो फिर अब जिनेंद्र भगवान में गाढ़ प्रीति प्रतीति हमको होनी चाहिए। जिनेंद्र देव ने जो कुछ भी कहा है वो सब सही है। ठीक है, काल में तीन शास्त्र ऐसे हो गए हैं जिनमें अपने निहित स्वार्थों से या अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ जिस देव के वचनों से इतर बात भी आ गई है। तो जब भी किसी शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है तो उसकी टीका की प्रामाणिकता, उस शास्त्र के लेखक की प्रामाणिकता, संपादक की प्रामाणिकता, ये भी हमको अवश्य देखनी चाहिए। ये नहीं कि जैन धर्म के अंदर जो कोई भी शास्त्र है वो सारे प्रामाणिक हो गए क्योंकि हमारे निशंकित अंग चलता है, ऐसा नहीं होता। आपकी प्रीति जिनेंद्र में है, आपकी प्रीति जिनेंद्र गुरु में है, और आपकी प्रीति जिनवाणी में है, लेकिन जिसके पास आप जा रहे हो वो जिनेंद्र है कि नहीं, ये वाली बात भी तो हमको परीक्षा में लेनी पड़ेगी। या किसी को भी बिना किसी शंका के जिनेंद्र देव मान लेंगे, जिनेंद्र शास्त्र जिनवाणी मान लेंगे, जिन गुरु मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक तो सर्वज्ञ देव और उन्होंने जो कुछ भी कहा और उनके मार्ग में जो भी चल रहे हैं उनकी शंका नहीं है, ये वाली बात हो गई। बट उसी समय आप जिस जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, वो जिनवाणी किसके द्वारा रचित है, उसकी टीका किन आचार्यों ने करी है, वो दिगंबर हैं कि श्वेतांबर हैं, कि वो 20 पंथामनाएं से प्रभावित हैं कि 13 पंथामनाएं से प्रभावित हैं, इतनी जानकारी भी हमको होनी चाहिए। ठीक है, हेलो।
हाँ हाँ
क्योंकि
जी
आज जेनिज्म के ऊपर बहुत सारी बुक्स हमको मिलती हैं जो लाइब्रेरीज में मिल जाती है, कि लाइक द बेसिक्स ऑफ जैनिज्म, द फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, द स्पिरिचुअलिटी ऑफ जैनिज्म, बहुत सारी अलग अलग टाइप की किताबें हैं। अब उनको कौन लिख रहा है? या तो वो लोग लिख रहे हैं जो सारे धर्मों के बारे में लिख रहे हैं, बिकॉज दे हैव टू सेल अबाउट ऑल दी रिलीजियंस, सो दे आर सेलिंग अबाउट जैनिज्म टू, राइट? तो वो ये लोग लिखते हैं, तो इनकी बातों में कई बार जैसे डीडी, लाइक टीवी में जब भी कुछ आता है, जैसे अभी भगवान महावीर पर एक एनिमेशन सीरीज स्टार्ट हुई थी, राइट? ऑन द टीवी दे गेव वन एनिमेटेड सीरीज ऑन लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर के ऊपर, महावीर जयंती के आसपास, लास्ट लास्ट ईयर शायद। तो बट वो महावीर भगवान की कहानी पूरी श्वेतांबर मत से प्रभावित थी, राइट? तो जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जो भी आप इंटरनेट पे पढ़ोगे, आप विकिपीडिया पे आपको जैनिज्म के बारे में मिलेगा, उसकी प्रामाणिकता आपको जांचनी पड़ेगी, क्योंकि जो एडिट कर रहा है वो श्वेतांबर एडिट कर रहा है जैनिज्म के बैनर पर, ये दिगंबर में भी कौन एडिट कर रहा है, ये सब हमको देखना पड़ेगा, राइट? जैसे एक आत्म सिद्धि शास्त्र के लिए है, तो तो एक आत्मसिद्धि शास्त्र को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, गांधी जी भी पढ़ा करते थे भाई, अभी भी कई लोग, कोई सारे पंथी लोग भी पढ़ते होंगे, कोई अपन गुरुदेव जी वाले लोग भी पढ़ते हैं, गुरुदेव जी ने भी उसको प्रवचन किया, आज के भी बहुत सारे विद्वान उसको प्रवचन कर रहे हैं, श्रीमद राजचंद्र मिशन वाले विद्वान भी उसको प्रवचन कर रहे हैं राइट। तो अब वो एक ही चीज का इंटरप्रिटेशन है कि चलो जाति पंथ का भेद नहीं, जो कोई यदि भगवान के बताए मार्ग पर चलता उसकी जाति पंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब भोपाली की गाथा है, अब उसके कितने सारे इंटरप्रिटेशन है राइट। तो वक्ता की प्रामाणिकता भी जांचना बहुत आवश्यक है, जस्ट बिकॉज वो आत्मसिद्धि शास्त्र है तो हम कहीं से भी उठाकर कोई भी पढ़ के वो मान लें, ऐसा नहीं। आपने वक्ता की, उसके टीकाकार की, उसके अनुवादक की, उसके संपादक की, एडिटर की, प्रकाशक की, पब्लिशर की, इनकी प्रामाणिकता की जांच भी करी है या नहीं करी, वो भी हमको देखना होगा।
परंतु वो सारा कुछ कैसे वैसे पता लगे? कई दफा वो हमको पता भी नहीं होता है कि ये कौन कौन थे है कि तो
मोटा मोटा तो हमको इससे इतना पता पड़ जाता है कि सबसे पहले आपको वो किताब मिली है तो कहाँ से मिली है, ऑल पब्लिशिंग हाउस तो पता पड़ ही जाते हैं कहाँ से आ रही है। इफ अ पब्लिशिंग हाउस इज टोटली नॉन जैन, जो कि जस्ट एक पब्लिकेशन है, वो पब्लिश कर रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अब इसका जो एडिटर है उसके बारे में जानना होगा राइट। वो पहला क्वेश्चन, क्योंकि उसको पता रहेगा तब तो, क्योंकि समय सार और प्रवचन सार के इंग्लिश एडिशन इतने निकले हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में चलते थे, तो वो यहाँ पर एक हिंदी ग्रंथालय है मुंबई में राइट, वहां से या तो पब्लिश हुए, तो दे आर जस्ट द प्लेन ट्रांसलेशन। वो बहुत ही ज्यादा एक लेमेन आदमी के लिए ट्रांसलेशन किए हुए हैं। आप उनमें भी समय सार को पढ़ोगे आपको भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सिंपल ये कि आत्मा अनादि अनंत कुछ कुछ बात ही नहीं है, वो जस्ट जो कुनकुनाचार्य देव की सीधे सीधे गाथा थे उनको सीधा सीधा सिर्फ एक अनुवाद है, उसमें उसका क्या मर्म है, उसकी क्या टीका है, वो भी एकदम सिंपल, नॉट इवन इन दोज जार्गन्स जो हमारे आचार्य कुनकुन देव के होंगे। तो अब उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं ये तो गीता में भी लिखा है ना कि आत्मा अजर अमर है, और एक जैनिज्म में भी बोल रहे हैं कि आत्मा अनादि अनंत है, तो स्पेशल क्या है कि यहाँ का जो आत्मा की अनादि अनंतता है वह उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है, ये सत है, ये वाला सत अनादि अनंत है, तो अब उसका वजन अलग हो जाता है, गीता में उसकी बात ही नहीं होगी, उत्पाद व्यय द्रव्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये शायद जो उसका ट्रांसलेशन कर रहा है उसको शायद उतना पता नहीं है, क्योंकि शब्दों का ट्रांसलेशन तो मैं भी कर दूं आप भी कर दो, बट उसके भाव ख्याल में आना कि जो ये जो लिखे हुए आचार्य देव है उसका मर्म क्या है, ये ज्ञानी गुरुओं की टीकाओं में ही आ पाता है। तो निःशंकित अंग का मतलब ये नहीं कि हम फिर जो कुछ भी जैन धर्म भगवान से रिलेटेड है हम उसको बिना शंका से लेते जाएं। एट फर्स्ट स्टेज तो आपको हमेशा थोड़ा सा यू नो जजमेंटल होना ही पड़ेगा कि पहले तो ये बताई वाली जिनवाणी है तो कहाँ से आई है, क्या है, क्योंकि पुराने कई व्यक्ति के बीच में चरित्र लिखे गए, जैसे कि प्रद्युम्न कुमार का चरित्र है तो वो लिखा गया, तो दो तीन आचार्यों की ऐसे भी उस पर चरित्र लिखेगा जो बिल्कुल बीस पंथी आमनाएं से प्रभावित है, तो उसमें वो सब अपने कुल देवी के यहाँ से जाके पूजन करते हैं, अलग अलग मन्नतें भी मांगते हैं, वहां पर बड़े बड़े पुरुष लोग मन्नतें मंगवाते हैं, तो ये सारे उद्धरण जो आते हैं ये सब कुछ खोटी परंपराओं को चलाने के लिए जिन्होंने लिखे हैं वो उनके प्रयोजन से लिखे हैं, जिनवाणी में ऐसा कुछ भी उद्धृत नहीं है।
परंतु वो पढ़े बगैर तो पता भी नहीं लगे कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि हमको कई कॉन्सेप्ट पता है हमारे दिगंबर के ऐसा नहीं होता है हमारे में, और कहानी लाइक प्रथमानु योग की के वो पढ़े बगैर तो फिर पता भी नहीं लगता ना कि
स्क्रीनिंग है, उसके बाद फिर हम पढ़ने जाएं आगे तो हमको इतना तो पता रहना चाहिए कि ये हो रहा है कि नहीं, है कि ऐसा समय में होता कि नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी में हमने में पंचामृत अभिषेक आदि का उदाहरण आता है। तो इसके जब वो तर्क देते हैं तो वो यही बोलते हैं, देखो जिनाचार्य देव ने यहाँ पर लिखा है, देखो वो अपने पुराने पुराने ग्रंथों को उठाकर बोलते हैं कि पद्म पुराण की वाली लाइन में यहाँ पर आया है, ऐसा अलग अलग कर कर। तो वो वाले जो वो उद्धरण वहां पर दिखा रहे हैं, वो वाले उद्धरण वो जस्ट एक दो लाइन बताकर आप यदि वो पुष्ट करना चाहोगे तो फिर वहां प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर किसी ने पढ़ा हो, कोई उसके मर्म को जानता हो, वो उसको एक्सप्लेन करेगा। जैसे दयानंद राय जी की पूजन होती है तो भाई वहां पर तो सारी चीजें लिखते हैं कि घी लेके आओ, पकवान लेकर आओ, राइट, जितने भी पूजन है। तो अब वो उसमें क्या, अब हम भगवान को सही में फल फूल चढ़ाए, घी चढ़ाए, उसमें लिखा तो सब है ना। तो किसी को चढ़ाना है तो वो तो उसमें कुतर्क कर सकता है। बट फिर हम कैसे पाने के पंडित दयानंद राय जी प्रमाणिक थे कि नहीं थे, तभी क्वेश्चन उठ जाएगा फिर, होता कि नहीं होता है। तो आप दयानंद राय पंडित जी का अलग साहित्य पढ़िए, आप उनके आध्यात्मिक भजनों को पढ़िए, उनकी कर्णानियोक्ति कवित्व को पढ़िए, चर्चा शतक में जो उन्होंने दिया, तो आपको फिर पता पड़ेगा कि उनका वीतरागता का पक्ष कितना ऊंचा है। जो शब्दों का प्रयोग किया वो भक्तिवश किया है, शब्दवश नहीं किया। जैसे देवादिक भी करते हैं तो वो लेके आते हैं सारे पकवान, बट उनके देवकृत होते हैं। तो इन्होंने भी जो अष्टानिका की पूजन लिखी, दशलक्षण की पूजन लिखी, तो शायद उस दृष्टिकोण से लिखे कि देवादिक लेके आ रहे हैं, राइट, या उस समय के जमाने में जैसा इन चीजों के, जैसे अभी हमारे में तो उस समय कुछ और चलते हों। बट इसका ये मतलब हम छल ग्रहण नहीं कर सकते कि चलो दयानंद राय जी बोल रहे हैं तो हमको ये सच में चढ़ाना है, क्योंकि हमको दयानंद राय जी का पक्ष पता है कि उनका पक्ष तो इस वीतराग धर्म में कितना ऊंचा है, राइट। तो ऐसे उसकी प्रामाणिकता का ख्याल होगा, नहीं तो कोई अकेली पूजन पढ़ के बोला अरे नहीं दयानंद राय जी तो वीरपंथी थे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो प्रामाणिकता की भी परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तो बस इतना है कि हम जब कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमको यदि कुछ भी डाउट लग रहा है, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जिनका जिनागम में कोई वर्णन नहीं है, बट जिनागम को पढ़ाने वाले लोग उन क्रियाओं को कराने लगे, तो ये वाली बातों से हमको बहुत
अनुभव जी आई थिंक हिज ड्रॉप सचिन भाई ड्रॉप थे गया छे के कौन ले आई तो सचिन भाई ले आई वा सा प्रीति बेन कौन ले आई तो आई जॉइन लेट
ना आई थिंक सचिन भाई ले आया था केम नहीं जाते आया होया आई हैव नो आईडिया मैं हूं पण लेट जॉइन करियो मैं
ओके हां हूं पण लेट मारे मेहमान आवे गया था सो I think अनुभव जी पोतानी जाते जाई वास है
let me text सचिन भाई
Ankit, you want to bring him? Ankit?
ભાનુબેન લાવવા તો હું લાવી શકું, મારો મને નંબર આપો.
હા ભાનુબેન, હા અચ્છા ઓકે.
અંકિત તમે લઈ વાજા
છો? હા હું લાવી દઉં છું. મને મને આઈ થિંક એક સેકન્ડ, હું નંબર કન્ફર્મ કરી દઉં. મારી પાસે છે પણ આઈ નીડ ટુ કન્ફર્મ. હું પણ મારે
બુક લઈ આવું, નંબર નહીં ઓપન.
तो ये वाली चीजें हमको देखने की जरूरत है. अभी सेकेंड जो अंग है वो है महकांक्षित अंग, भव सुख वांछा भानी. इसकी आधी लाइन दी हुई है क्या कि कर्म को धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा ना करें. ठीक है, ये एक एक्चुअली एक बहुत आई थिंक एक हिडन एजेंडा हो जाता है हमारा. जब भी हम कुछ भी सात्विक क्रियाएं करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, एक मेंटल ट्रांजेक्शन रहता है कि हम हमेशा उससे कुछ रिटर्न में चाहते हैं. ऑलरेडी हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो एक मेंटली हमारे में रहेगा कि हमारे साथ अच्छा हो जाए, ये हमारे साथ अच्छा करेगा. इफ आई एम हेल्पिंग समवन राइट नाउ, दैट पर्सन विल हेल्प मी समडे, कभी तो करेगा. हेलो, आपको आवाज क्लियर आ रही है? अभी ब्रेक हो रही है?
नहीं, बहुत क्लियर आ रही है.
तो वृष भव सुख वांछा भाने, ये महकांक्षित अंग ये है कि वो धर्म करता है तो धर्म करने के पीछे ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि मुझे इस संसार का कुछ मिले. मेरे पास मेरा कोई हिडन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये करने से ऐसा मिले, राइट? तो जैसे कि आजकल का जितना भी योग है, आजकल का जितना भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो पूरा का पूरा वर्ल्ड जहाँ लैग कर रहा है, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि ट्रेंड हो गया आजकल के सबको स्पिरिचुअल होना है. बी स्पिरिचुअल, बी काम, इनर पीस, इनर मैनेजमेंट, इनर इंजीनियरिंग, सब लोग लाइन से लगे हुए हैं उस पर, राइट? और बहुत सारी दुकानें बहुत अच्छे से उस पर चल रही हैं. आप यदि इंडिया पर आएंगे तो आप ऋषिकेश चाहिए, आप हरिद्वार चाहिए, बनारस चाहिए, नीचे की साइड क्या बोलते हैं उसको, चेरा पूंजी, कौन कौन से हैं, ये अलग अलग जगह जहाँ भी आप जाएंगे, कोयम्बटूर, ये सारी जगह तो एकदम प्राइम बन चुके हैं. लोग एकदम शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और हैवी हैवी फीस वो देते हैं इन सब चीज़ों के लिए, सेशन के लिए, और उनको अटेंड करते हैं और फिर अलग अलग टाइप का योगा सीखते हैं और उस योगा से वो बॉडी को सही करते हैं, ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम दूर करते हैं और इनर पीस, मेंटल पीस को लेके आते हैं, राइट? ये सीधा का सीधा जैनिज्म का प्रिंसिपल है कि जो धर्म होता है वो धर्म पहली चीज कि वह आत्मा की वस्तु है. धर्म ये स्वयं की पर्सनल चीज है, ये एक तो पूरी पब्लिकली करने वाली चीज नहीं है. ठीक है, सबसे पहली चीज. दूसरी चीज, धर्म वो होता है जो मोक्ष के लिए हमको लगाए, क्योंकि संसार के लिए तो बाकी सब कुछ है, है सर्व श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा. कि ये बॉडी को ठीक करने का तो हमने क्या क्या नहीं सीखा, कब से नहीं सीखा हमने, किस किस गति में ये काम नहीं किए कि मेरी बॉडी स्वस्थ रहे, हमने किस किस गति में नहीं सोचा कि मेरी आयु लंबी रहे, मेरी धन संपत्ति बढ़े, मुझे भोजन मिले, मुझे व्याधियां दूर रहें, रोग दूर रहें. ये सारी कहानियां तो और ये सारे विचार तो हमेशा से हम करते आए हैं, जो नहीं किया वो ये कि संसार दुख का कारण है, दुखमय है, संसार यानी मेरे राग द्वेष रूप आश्रय बंध के परिणाम, और मुझे इनको दूर करना है, राइट। और इस दुनिया में जो कुछ भी दिखता है वो सब इस शरीर में जो जड़ पांच इंद्रियां हैं उनको ही संतुष्ट कर सकता है, संतुष्ट तो नहीं मतलब उनको ही फुलफिल कर सकता है। आत्मा के लिए तो ये सब अलिंग ग्रहण है, आत्मा के पास वो औजार ही नहीं जिससे वो इन विषयों को भोग पाए। तो आत्मा के पास तो इस दुनिया में भोगने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। ये पांच इंद्रियां जड़ हैं, तो उनके विषय जड़ हैं, तो ये इनको भोगते हैं एक दूसरे बराबर। लेकिन आत्मा के लिए जो आत्मिक सुख है, जो आत्मा का वास्तविक है, उसके लिए तो उसकी प्राप्ति के लिए तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, करेक्ट।
हाँ।
तो जो धर्म वस्तु रहेगी, जैनिज्म ये कहता है यदि धर्म से भी हम संसार की ही वांछा करेंगे तो वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो उसे कहते हैं जो संसार दुख से उठाकर मोक्ष मार्ग में आपको रखे, मोक्ष सुख में आपकी स्थिति कराए, करेक्ट।
हाँ।
तो जो संसार के लिए ही किया गया धार्मिक अनुष्ठान है या स्वाध्याय है या यम नियम संयम है, ये कुछ भी है, इसको धर्म संज्ञा नहीं दी जाती, इसलिए मिथ्या दृष्टियों को होता है, ये निदान कहलाता है, इससे अकाम निर्जरा हो सकती है, इससे बाल तप हो सकता है, लेकिन इससे धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म वह निकांक्षित जीव को होता है जिसको संसार से कुछ अपेक्षा ही नहीं रही, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, वो पूरी तरह संसार से निराश हो गया है, संसार ने उसको अपसेट किया हुआ है, यू नो डिसअपॉइंट किया हुआ है कि बताओ हमने इतना अनंत काल संसार पर इन्वेस्ट किया और आउटकम में इन्वेस्टमेंट की एज अ रिटर्न हमको क्या मिला, कुछ भी नहीं, सिर्फ दुख, संसार का बढ़ना, अरे नर देह की यह हार है, कि इतना इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी हमने कर लिया, अब हमको ये रियलाइज करने का मौका मिला कि चलो हमने इतना टाइम संसार में बिताया, अब हमें मनुष्य पर्याय मिली है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं। जब हमने रिफ्लेक्ट किया इस पर तो हमको पता पड़ा कि पिछली इन्वेस्टमेंट का तो जीरो रिटर्न है, नेगेटिव रिटर्न ही ज्यादा है, तो अभी क्या करें, कि अभी ये करना कि संसार में जितना इन्वेस्ट किया उसकी जगह एक भव मोक्ष में इन्वेस्ट करके देखते हैं, राइट। तो मोक्ष में इन्वेस्ट करने का रूल क्या है, कि आपको संसार का सब भूलना पड़ेगा, आपको संसार में कुछ भी आकर्षित लगता है तो आप मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हैं। यही श्रीमद राजचंद्र जी ने बोला जब उन्होंने मुमुक्षु के लक्षण बताए, क्या कषायों की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, और उसके बाद तीसरे नंबर पर, दूसरा और तीसरा नंबर इंटर रिलेटेड है, भव खेद, जिसको संसार से तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, खेद लगा कि क्या है ये, यहाँ पर सुख जैसा कुछ है ही नहीं, और जिसको सिर्फ मोक्ष ही चाहिए वो मुमुक्षु है। कहा तो आत्मार्थ ने बात, क्या कषायों की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भव खेद प्राणी दया, कहा तो आत्मार्थ ने बात। तो बात तो ये थी कि हमें संसार में कुछ भी आकर्षित नहीं लगना चाहिए था, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, कि अब उसको भगवान में ही कुछ ना कुछ आकर्षक है, शांतिनाथ भगवान शांति को दे रहे हैं, राइट, महावीर भगवान कुछ और दे रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान तो एकदम ही अलग संकट मोचक हो गए हैं, राइट। और पार्श्वनाथ भगवान तो ठीक है, वो तो बैक फुट पर है, उनके जो अकम्प्लिस हैं पद्मावती धर्मेंद्र वो मेन हाईलाइट टेक्स, उन्होंने स्टेज को लिया हुआ है प्रेजेंटली। ये जो कुछ भी है ये सब कुछ हमें मोक्ष मार्ग से दूर करता है, क्यों, क्योंकि मोक्ष जिसको चाहिए उसको संसार अच्छा नहीं लग सकता, एक म्यान में दो तलवार नहीं चल सकती, या तो आप संसार चाहते हो या मोक्ष चाहते हो, दोनों नहीं चाह सकते, राइट। ठीक है, तो जो कुछ भी क्रिया या जो कुछ भी आपको यदि कभी भी ऐसा हिंट मिलता है कि ये वाली क्रिया से आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आपकी आपकी उम्र बढ़ेगी, ये सारे जितने भी काम हैं, ये सारे काम एज अ बाय प्रोडक्ट हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बाय प्रोडक्ट की कोई इच्छा नहीं करता, वो हो जाते हैं राइट। यदि वो मेन प्रोडक्ट बन जाते हैं कि हमारा पूरा काम ही इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे, हमारा रूटीन बन जाए, हम स्वर्ग में चले जाएं, हम वैदिक क्षेत्र चले जाएं, या पता नहीं क्या हो जाए, तो ये जो कुछ भी यदि हमारी इच्छाएं हैं तो हम जैन दर्शन से तो बहुत दूर है, सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं अभी। ठीक है, कुछ भी, क्योंकि आप सब भी जान ही रहे होंगे आजकल ऐसा सब चल ही रहा है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले बताया जाता है इसका फायदा क्या है, व्हाई शुड यू डू इट, क्योंकि अब वो सब पीआर में आ गया, एडवर्टाइजमेंट में आ गया, मेरी बात कौन सुनेगा कि मेरी बात से उसको फायदा नहीं होगा। तो वो फायदा मोक्ष तो जब होगा होगा, तत्काल में क्या फायदा, तो मुझे उसको ब्रांडिंग ही ऐसी करनी पड़ेगी कि आप ये करोगे तो आपको तुरंत ही इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा, एकदम आपको शांति लगेगी, एनर्जी आपकी पूरी बॉडी से फ्लो होकर आपको समझ में आएगी। बहुत सारे हाथा योगा चलता है आजकल, एक हाथा योगा इज वेरी गुड फॉर यू टू रिजुविनेट। तो ये सारी चीजें जब धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं तो हमको भूलनी होगी, क्योंकि धर्म से हमें सिर्फ सुख चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई भी तरह की वांछा है, कोई भी तरह की वांछा, वो हमारे सम्मति की सीधी सीधी बाधक है। ठीक है, क्योंकि जो अंतराय कर्म है वो इसके साथ काम करता है, क्योंकि देखिए मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म में दो प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां, उसमें से 16 तो हम बता दें अरंगानुबंधी की, चार अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, संचुल, इन चार की चार चार 16 अलग हो गई। अब जो जो नो नो कर्म की प्रकृतियां बची ना, हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ठीक है, ये नौ मोहिनी कर्म की प्रकृतियां, ये रॉ मटेरियल है। हम हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये करते हैं, इसके साथ एक वेदनीय कर्म है। वो वेदनीय कर्म क्या करता है, मोहिनी कर्म में नो कर्म की सामग्री मिलता है, हम नो कर्म के लिए कषाय करते हैं, और वेदनीय कर्म हमको दो कर्म की सामग्री को देता है। हेलो, राइट, मोहिनी कर्म में हम क्या कर रहे हैं, लो कषाय कर रहे हैं, लो कषाय में हाथ से रति अरति इत्यादि कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि रति नाम का मोहिनी कर्म है, क्या हमें कुछ प्रीति अच्छा लगे तो उसके कारण शायद हमको यहाँ पर जो कुछ भी संयोग होंगे उन सबसे रति होगी, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे रति नाम के मोहिनी कर्म का उदय है। ये नाम कर्म हमको वो लाके देगा चीजें बाहर की, राइट, तो मुझे मेरी फैमिली मिली, मुझे मेरा घर मिला, और मुझे साथ में चारित्र मोहिनी ने रति का कर्म का उदय कर दिया तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। बट ये बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है कि अभी थोड़ी देर बाद अरति का उदय आया तो मुझे यही फैमिली लग रही है कि मुझे कितनी बंदिशों में रखते हैं, उसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, लोग के कितने खुले विचार हैं, वाई दे आर सो पुराने ख्याल वाले लोग, राइट, तो ये अरति आ गई, राइट। तो अब आप समझिए, नाम कर्म, सॉरी नाम कर्म, वेदनीय कर्म जो कुछ भी आपको दे रहा है, राइट, शुभ पुण्य के मतलब वेदना के कारण या आपको खुश होने के कारण, वो सारे कारण एक्चुअल में वेदनीय कर्म नहीं दे रहा है, वो तो सामने लाके उसने तो आपके सामने फैमिली को रख दिया, राइट। तो साता वेदनीय का उदय आया तो साथ में अंतरंग में रति परिणाम भी तो चाहिए, आपको प्रीति भी तो होनी चाहिए। तो साता वेदनीय का उदय साथ में रति मोहिनी कर्म का उदय, तो फिर ये जो सामने फैमिली है या आपका कुछ भी है आपको खुश कर पाएगा, करेक्ट। तो क्लियरली जिसकी इच्छा करते हैं सामने उससे तो सुख दुख का लेने का कोई मतलब ही नहीं, फैमिली तो सुख दुख थोड़ी है, आपके अंतरंग में मोह का कैसा उदय है उससे सुख दुख है ना। तो फिर हम वांछा बाहर की वस्तुओं की क्यों करें, हम अंतरंग के मोह के परिणाम को करेक्ट करने की, मतलब उसको मोह से तोड़कर वितराग परिणाम उत्पन्न करने की क्यों नहीं करते, दैट विल सॉल्व द पर्पस। समझ में आया, इज इट क्लियर?
हाँ हाँ
हाँ
वो ये मोहनीय कर्म के ये जो नौकरशाह है मोहनीय कर्म के थे वो मुझे तो लाइक ख्याल भी नहीं था आपने बताया।
हाँ वो नौकरशाह वो नौ कर्म के उदय में होती है। तो आपके यदि हंसी आ रही है तो हंसी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जोक बहुत फनी है, आपको हंसी इसलिए आ रही क्योंकि आपके हाथ से कषाय का होता है।
हाँ
तो यू डू नॉट रिक्वायर जोक टू लाफ, जरूरी नहीं कि जोक हो। तो इंस्टेड ऑफ विशिंग फॉर अ जोक आप ऐसा कुछ करो ना कि आप शायद उस लाफ को कंट्रोल कर पाओ। तो जैनिज्म आपको मोह को कंट्रोल होने की कला बता रहा है। और हम यदि वहीं पर लगे हो कि नहीं नहीं मेरे पास एक कार हो जाए, मेरे पास अच्छा नाम हो जाए, तो फिर वो पूरा पर्पज ही खत्म हो जाता है जैनिज्म को पढ़ने का। वो आपके मोह नाम के रोग का ऑपरेशन कर रहा है और आप बस वहां लगे हो कि नहीं, जिसके कारण जिसके निमित्त में मोह रोग होता है वो वाले साधनों को यदि हम उसकी वांछा करेंगे तो फिर जैनिज्म की तो पूरी मेहनत खराब हो गई ना हमारे साथ जो की गई है। राइट, अरे गेटिंग इट? आपको पॉइंट आ रहा है कि क्यों सम्यक दृष्टि जीव को भव सुख की वांछा नहीं होती? कि पहली बात वो जानते हैं कि जो सामने का भव सुख है वो सच्चा सुख का कारण नहीं है, अंतरंग का मोह राग द्वेष का परिणाम वो सुख या दुख का कारण बनेगा।
बराबर,
तो वो उस अंतरंग मोह परिणाम को डील करते हैं, वो बाहर के प्रसंगों को हेरफार करना नहीं चाहते। राइट, इसलिए उनके भक्तों की वांछा नहीं होती। तो संसार में जो कुछ भी उपदेश आपकी लौकिक उन्नति के लिए धर्म के स्टेज से दिया जा रहा है वो सारा उपदेश जिनाज्ञा के बाहर का है, तो महकांक्षी संघ को तोड़ता हुआ है। स्वाध्यायी जीवों के लिए जो पहली बार धर्म में आए उनको तो हम ऐसे ही बोलेंगे कि भैया देखो धर्म करो आपको अच्छा लगेगा, आपके साथ अच्छा होगा, उनके लिए ठीक है क्योंकि वो पहले तो आए तो इस बात को सुनने के लिए। बट जो स्वाध्यायी लोग हैं वो जिनेंद्र देव की वाणी से सांसारिक प्रयोजन को नहीं साधते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तीसरा अंग, मुनि तन मलिन न देख गिनावे। मुनि तन मतलब मुनियों के शरीर आदि, मलिन यानी मैले देखकर घृणा नहीं करते, ये निर्विचिकित्सा अंग है। अब देखिए हमारे मुनियों के जो 28 कुल गुण होते हैं बहुत स्पेशल होते हैं, उसमें से जो कुछ मूल गुण है जिस पर सबको आपत्ति होती है, सबको क्वेश्चन होता है कि जिनके न न्योन न दंत धोवन, जिनके नहाना भी नहीं होता और ब्रश करना भी नहीं होता, ये तो होना चाहिए ना मुनि राजों के। हेलो,
वो तो उसके
हाँ हाँ तो होना चाहिए ना, लेकिन क्या मतलब हुआ नहाना भी नहीं मंजन भी नहीं करना, बॉडी की जितनी सफाई है उतनी तो होनी चाहिए योग्य।
बॉडी से उनका कुछ है, बॉडी तो उससे भिन्न, उसने भिन्न ही देखा है तो फिर उसकी सफाई का क्या कहाँ बाकी है।
देखिए जब वो बॉडी से अपने आप को भिन्न देखते हैं तो जो एक मुमुक्षु श्रावक है उसका भी कर्तव्य है कि वह मुनिराज को उनकी बॉडी से नहीं देखे। राइट, तो चूंकि वो नहाते नहीं है, चूंकि वो नहीं मंजन करते हैं, तो बहुत कुछ संभावना है कि उनके पूरे शरीर में शायद मिट्टी लगी रहे, धूल चिपकी रहे, बहुत मलिन शरीर को। राइट, बहुत सारी संभावना है कि उनके शरीर से शायद दुर्गंध भी आने लगे। अब समझिएगा अभी तो हम जो देखते हैं वो ठीक है, वो अच्छे से दिख जाते हैं हमको मुनिराज, बट ऐसी भी संभावना हो सकती है किसी मुनिराज को बहुत भयानक रोग हुआ हो या उनके शरीर में शायद कुछ स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, कोई दुर्गंध आती हो, कोई मलिनता दिखती हो, इस कारण से कोई मुनियों के समीप जाना छोड़ते, या मुनिराज आपके घर पर आहार के लिए आए और वहां उनको वोमिटिंग हो गई, उन्होंने उल्टी कर दी, वमन हो गया, तो कोई उसमें से ग्लानी करने लगे, तो ये वाली बात के लिए समय दृष्टि श्रावक का चित्त इतना साफ और इतना भक्ति से परिपूर्ण होता है कि वह मुनिराजों के या श्रावकों के भी साधर्मी के मलिन शरीर को देखकर घृणा नहीं करता, वहां उसकी अतिशय भक्ति जागृत होती है। या तो वह उस रोग का निवारण करना चाहता है, मुनिराज की संगति करना चाहता है, जैसे कि बिना घृणा के बिना मलिनता लेकर आए। जैसे आपने देखा होगा अभी जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जब उनकी एज हो जाते हैं, वो अशक्य हो जाते हैं, राइट, एज आती है, तो फिर वो खुद अपनी जो डेली नीड्स उनको खुद नहीं कर पाते, किसी को करानी पड़ती है उनको, उनको नहलाना, उनको फ्रेश होने जाना है, तो ये सब कुछ, राइट, वो खाना भी खुद नहीं खा पाते, राइट, तो अब उनको वो बेसिक नीड्स ही है जो बॉडी की, उसके लिए ही उनकी ताकत थी, तो उनको कौन कराएगा ये सब। हाउ विल इट हैपन, आप इस यदि आप यदि उनको आप यदि उनकी हेल्प कर रहे हैं और आपको इन सब से घिन आती है, घृणा होती है, तो आप अच्छे से हेल्प नहीं कर पाएंगे। एक 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 व्यक्ति है, उसने चार बार उल्टी कर दी, अभी आपने साफ करी थी, दूसरी बार फिर उसने उल्टी कर दी, आप साफ करके गए थे दीजिए। तीसरी बार आपको शायद एक बार आप ठीक है चलो कोई बात नहीं, दो बार ठीक है कोई बात नहीं, तीसरी बार तो आपको गुस्सा आएगा। ये वाली बातें कहने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन हम एक्चुअल में करने आते हैं किसी के संबंध में, किसी को आप जब एक्चुअल में मदद करते हैं, तब आपको पता पड़ता है कि व्हाट एम आई डूइंग, क्या चल रहा है ये। इसके लिए देखिए तो कितना कितना भयंकर कितना भयंकर मोह है हमारा, जो शरीर जिसमें हम रहते हैं, उस शरीर में तो हम स्वयं यूं शरीर को क्या बोलते हैं, ये तो मलमूत्र का घड़ा है, एक स्वच्छ कंटेनर फॉर ऑल दी, जितना भी आपके पास गंदगी है वो आप सब शरीर में लेके चलते हो, राइट, इट्स अ कंटेनर, आप इसको रोज एम्प्टी भी करते हो, रोज भर देते हो, राइट। तो जो अपना स्वयं का शरीर है और उससे निकलने वाला निकृति, आंख से मल निकलता है, नाक से निकलता है, कान से निकलता है, मुंह से निकलता है, हर जगह से हमारे कुछ ना कुछ गंदगी निकलती है, राइट, और फिर पूरी बॉडी से भी स्प्रेडिंग हम करते ही हैं, राइट। तो मोह की तीव्रता देखिए कि अपनी बॉडी से कितना ही दुर्गंध युक्त मल निकले, इसको एक क्षण को भी वहां से ग्लानि नहीं होती, लेकिन दूसरे की परेशानी में भी देखकर ना तो वैराग्य होता है, ना ही बॉडी के स्वरूप का विचार आता है, बस वहां तो बस सबसे पहले नाक बंद होती है हमारी, हम अजीब सा फेस बना लेते हैं, वी डोंट इवन नो कैसे उसके साथ डील करना है, राइट। तो अब सम्यक दृष्टि माइंडसेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो अपनी बॉडी से तो अत्यंत विरक्त होते हैं, क्या क्या चल रहा है शरीर में उसका योग के वो अपने शटावश्यक का पालन करके देखते हैं, लेकिन दूसरों के शरीर में जो होता है उनसे वो दो सीख लेते हैं, एक तो उनके अंदर अनुकंपा होती है, भक्ति होती है, करुणा होती है, तो वे दूसरों के दुख का तो निवारण करना चाहते हैं, अब वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं हो, राइट। तो लेट्स टेक अ रैंडम सिचुएशन, एक बहुत गंदी नाली है और उस नाली पर यदि कोई फंस गया है तो क्या आप उसको बचाने जाएंगे, सिंपल, और कोई आदमी ही नहीं, आदमी तो उसे ऐसा बचा लोगे, कोई जानवर फंस गया है, व्हाट वुड यू डू,
तो उसको बेनेज कहेंगे कि इतनी गंदी नाली है तो नहीं जाना है, पर उसको बचाना चाहिए उसको,
वो तो वो होंगे, वो ये सारे कामों में रुचेंगे, राइट। इतनी सारी हमारे पुष्पन युक्त कहानियां है, किसी कोड़ी मुनिराज हो गए, जैसे कि पूरी सिद्ध चक्र विधान की जो पूरी कहानी है वो और क्या है, वो इसी बात पर तो है कि बताओ 700 लोग हैं सुल्तान आदि, उन सबके शरीर में से दुर्गंध आ रही है, भयंकर दुर्गंध, कोई उनके पास नहीं आना चाह रहा, एंड देन मैंने सुन रही, राइट, वो उन सबकी सेवा करते हैं, राइट, उनको शटावश्यक में लगाते हैं, उनको जिनेंद्र देव की पूजन करने की प्रेरणा देते हैं, राइट। तो ये सब बिना ग्लानि के कर पाना संभव नहीं है, और वो ज्ञानी नहीं आना, ये तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, शरीर के स्वरूप का विचार किए बिना नहीं हो सकता। हमारे भी घरों में भी हम बहुत से लोगों की हमको सेवा करनी हो तो वो शरीर के स्वरूप के समझे बिना नहीं हो सकता। आप समझिए बेड रिडन हो जाना मतलब क्या होता है, भाई कोई शुद्धता शुद्धता का पर विचार नहीं बचता। लेकिन उस व्यक्ति की पीड़ा को भी हमको समझना चाहिए, शरीर के स्वरूप को समझना चाहिए। तो अपनी बॉडी का मल मल नहीं लगता किसी को भी, पर दूसरी बॉडी के मल सामने आने पर वो मनुष्य का साधर्मी बना, वो भक्ति मतलब कहाँ गायब हो जाता है हमको पता नहीं चलता, राइट। तो जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो इतने उदार चित्त वाले होते हैं, इतनी भक्ति इतनी करुणा उनके अंदर होती है कि मुनिराजों के तो भक्ति वशात वो जैसे बने तैसे रोग को दूर करना चाहते हैं, उनकी जैसे चाहें तैसे वैसे उनकी कुछ पूजा करते हैं, उनकी उनकी संगति नहीं छोड़ते, कितनी ही मलिनता उनकी बॉडी में आ जाए, कितने ही बड़े रोग उनको आ जाए, राइट। बहुत छोटे छोटे सोचने के लिए मुनिराज को कम्युनिकेबल डिसीज हो जाए तो उनकी संगति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए,
करनी चाहिए।
अब बट दिस इज नॉट गुड ना, लेकिन हमको भी होगी फिर पूरे शहर को हो जाएगी ऐसे। तो ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कि नहीं है, बात ये है कि उनको डिसीज हुई है, आप उसके उपचार के बारे में एक बार विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वो तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, करेक्ट। ये सब उस समय दृष्टि श्रावक के हृदय में प्रश्न उठता है कि मुनिराज हो ये मोक्ष मार्ग में चलने वाले केवली भगवान के बड़े ज्येष्ठ पुत्र है, ये जल्दी ही छठवें सातवें गुरुस्थान में अभी झूलते हैं और पता नहीं कब छपक श्रेणी मारकर सिद्ध शिला में विराजमान हो जाएंगे। ये तो होने वाले भगवान है, चलते फिरते सिद्ध है, उनके सामने उनके शरीर से नहीं उनके अंतरंग तप वैराग्य शक्ति से उनकी भक्ति सम्यक दृष्टि को आती है और वह जैसे बने तैसे उनका उपचार करना चाहता है, उससे ग्लानी करके पीछे नहीं हटता। ठीक है, निर्विचिकित्सा अंदर कैसे चलती कहानी, शंका नहीं करता जिनेंद्र देश के बताए तत्व में, भव दुख की उसको इच्छा नहीं है कुछ भी एकांक्षित अंग में, और मुनि आदि के मलिन शरीर को देखते यदि किसी को कोई रोग भी हुआ हो तो भी उनकी सेवा करने से उनकी भक्ति से वो बिल्कुल भी नहीं चीजता। अगला तत्व कुतत्व पिछाने, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, ये नए संकेत के साथ जोड़ी बनाकर जाता है। ये जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, ये सच्चे और झूठे तत्वों की पहचान रखता है, उसको झट में पता पड़ जाता है कि ये जो जिनागम का वचन है, जिनागम का नहीं है, किसी ने अपने लिख से लिखा हुआ है, उसको झट में पता पड़ जाता है कि जो वक्ता बोल रहा है ये जिनागम से नहीं बोल रहा है, अपनी प्रसिद्धि के लिए बोल रहा है। किसको, जिसके पास अमूढ़ दृष्टि अंग है, वह तत्व जैसे कि एक अच्छा हीरे का व्यापारी है, वो कि हीरे को नहीं जानता, वो उनको भी जानता है कि क्या हीरे नहीं है, वो खोटे हीरों को भी जानता है, खोटे माणिक रत्नों को भी जानता है और सच्चे रत्न को भी जानता है, तो वो खोटे में और सच्चे में पहचान करना जानता है, राइट। ऐसे ही जिनेंद्र के तत्व को जानने वाला वह तत्व में और अतत्व में, कुतत्व में, झूठे तत्वों में, इन सब की पहचान रखना जानता है, उसके अमूढ़ दृष्टि है, वह मूर्ता नहीं करता कि जो है वो सब सही है, जैसा बोल तो वैसा हो जाएगा। आप में से कोई ओशो को सुनता है कभी, ओशो
क्या?
ओशो, ओशो रजनीश,
नहीं नाम ही सुना है मैंने, तो और कुछ नहीं पता
क्या बोला।
ओशो, ओशो रजनीश,
रजनीश, रजनीश,
रजनीश, ओशो, ओशो नाम से फेमस है वो तो। अरे हेलो, हाँ
नहीं नहीं हाँ नहीं, आई वॉन्टेड टू आई वॉज ट्राइंग टू से समथिंग बट आई डोंट नो वेदर यू कैन हियर मी।
हाँ ना समझ,
ओ समझ आई, अच्छा अच्छा थैंक यू। नहीं जो मैं निकांक्षी तंग में मैं पूछती थी मगर आप सुन नहीं पाए थे मुझे लगता है, ठीक है बाद में एंड में पूछेगी।
ओके ठीक है, तो ओशो के नाम आपने सुना है किसी ने? ओशो रजनीश, वो जैन थे बाय द वे, राइट? ही वाज अ जैन एंड ही उनके प्रवचन होते थे, राइट? अपने मंदिरों में प्रवचन होते थे रजनीश, ठीक है? हाँ, प्रोफेसर सागर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, समय साल पे प्रवचन करते थे वो, राइट? एंड धीरे धीरे उन्होंने सारे सब चीज का अभ्यास किया और फिर वो एक बहुत बड़ा नाम हो गया, उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया। ओशो का मतलब भगवान होता है किसी लैंग्वेज में, राइट? और आज भी उनकी फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, राइट? नाउ प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने समाधि पर बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, उन्होंने मृत्यु पर बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, तो बहुत सारी उनकी प्रसिद्ध और बहुत सारे वो शायद इंडिया से बाहर निकाल दिए गए थे, अलाउड नहीं किए गए थे, यूएस के यूएस से बाहर निकाल दिए गए थे, तो उनकी लाइफ में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन रहे। जो भी बात ये है कि आप ऐसे लोगों के एक प्रवचन को भी सुनते हो आप एकदम पागल हो जाओगे, क्या कितनी सही बात है, कितनी गजब की बात है। उनके पास तो सम्मोहन था, ऐसे कहते हैं जो भी उनकी बात सुनता था एक घंटे सभा में रहता था वो उनको हिप्नोटाइज कर लेते थे वो सम्मोहन, क्योंकि वो एक बार प्रवचन शुरू करते थे एकदम विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो बस बोलते जाते थे, राइट? एंड उनके बोलने की यूट्यूब पे बहुत सारे उनके प्रवचन अवेलेबल भी हैं। बात यहाँ पर ये अमूर दृष्टि अंग हमारा हथियार है, दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव, स्पेशली इन प्रेजेंट टाइम। वैसे वाले ऐसी स्थितियां हमेशा ही रहते हैं ऐसे टाइम्स, तो कि जब जिनागम की वार्ता करने वाले लोगों के पास भी जब ये ट्रेंड हो गया हो, जब उनके स्वार्थ इसमें निहित हो गए हो, तब एक सम्यक दृष्टि जीव को या एक स्वाध्यायी मुमुक्षु जीव को अमूर्त दृष्टि अंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको तत्व की और क्या तत्व नहीं है उसकी पहचान होना बहुत जरूरी, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों पर हम पूरी जिंदगी को उलझा देते हैं, राइट? एक बात हम कहीं से गलत सुनते हैं और हम उसको सही मान लेते हैं और हम अपना पूरा जीवन पूरा उपयोग खराब कर लेते हैं, राइट? जैसे कि भक्तांबर को पढ़ने से कैंसर तक ठीक हो जाता है, दैट इज एक्चुअली उसके वर्कशॉप होते हैं, आपको बता दी है भक्तांबर के जीवन वर्कशॉप होते हैं।
सुनाई नहीं दिया,
हाँ सुनाई
नहीं दिया,
भक्तामर
को पढ़ने से क्या होता है?
सर ठीक हो जाता है, उसके वर्कशॉप चल रहे हैं आजकल, हीलिंग वर्कशॉप। कोई व्यक्ति भक्तामर को जानता और उसने सुना है तो उसकी तो पूरी जिंदगी गई ना, अब खत्म हो गई उसकी जिंदगी, तो लाइफ टाइम कैंसर हुआ हो नहीं हुआ उसको ठीक करना है क्योंकि भक्तामर से ठीक होता है। इसके प्रॉपर यू नो मैं शॉक था जब हम लोगों ने उसको पूरा देखा, देयर इज अ बुक पब्लिश और उसकी प्रॉपर वर्कशॉप होती है, लोग उसको ज्वाइन करते हैं, कौन से वाले छंद को आपको कब पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, किस वॉइस में पढ़ना है, उसके हिसाब से उसका इम्पैक्ट होगा, तो आपके रोग के हिसाब से उसको कैलिब्रेट किया जाता है, राइट? दिस इज ऑल व्हाट इज गोइंग ऑन, आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज लाइक कोई मेडअप चीज नहीं है, जब देखा तब हम लोग बता रहे हैं आपको।
नहीं नहीं बराबर, हमको पता नहीं है इसलिए ऐसा होता है कि वो ऐसा भी होता है।
तो ये अमूर्त दृष्टि इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए लोग कहते हैं ना कि नहीं यार ये धर्म का क्या पढ़ना, हमको तो हम तो श्रावक हैं, हमको नहीं ये तो सब मुनिराजों के पढ़ने की बात है। नहीं, कोई भी मुमुक्षु है फर्स्ट उसको पहला होमवर्क ये है कि वो सात तत्व और सात तत्व संतन की भूल इसको इतने अच्छे से पढ़ ले कि कोई इस पर उसको डाउट दोबारा नहीं होता। एक बार वो हो गया तो वह तत्व को जानने लगा और इसके अलावा बाकी सब असत्व होगा, क्योंकि जब हम इसमें उलझ जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी भी आपने सुगंध दशमी होती है पर्व में, जो लोग साल में एक दिन भी मंदिर नहीं जाते हैं तो सुगंध दशमी के दिन जितने भी शहर में मंदिर होते हैं उन सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और वो साथ में क्या लेके जाते हैं, साथ में लेके जाते हैं धूप, क्या लेके
हाँ
जाते हैं धूप। और
धूप
उस दिन आप अंदर जाओगे तो आपको घुसना इम्पॉसिबल है, पॉल्यूशन लेवल हाईएस्ट होता होगा उस दिन। तो सब लोग मंदिर में दिया लेते और उस पर वो धूप को डाल के आते, धूप जलती है राइट, धूप जलती है उस टाइम। वाई वो धूप क्यों जलती है, क्योंकि उनको ऐसा बताया गया है कि सुगंध दशमी के दिन धूप जलाने से कर्म जलते हैं। नाउ ये वाली बात तत्व की एकदम विपरीत है, लेकिन इतनी बड़ी है कि आई एम नॉट श्योर आपके यहाँ भी शायद यूएस में होता हो ऐसा कुछ।
हमारे यहाँ छोटा मंदिर, हमारे यहाँ छोटा मंदिर है ना, वहाँ उन लोग करते थे। और ये तो अभी पंडित उत्तम चंद जी का देह अवसान हुआ, इसलिए मैं बताती हूँ कि पंडित उत्तम चंद जी यहाँ हमारे 10 लक्षण कराने आए थे। तो उन्होंने तो उनको वैसे वो तो सत्य के बोलने वाले थे, तो उन्होंने तो वो मंदिर वालों को बोला कि ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। मगर उनको अच्छा तो नहीं लगा, वो फिर भी उन्होंने तो किया। परंतु उन्होंने बोला कि ये इसमें तो कितनी जीव हिंसा होती है, आप लोग ये करते हो।
तो अब वो वाली बात क्यों हो रही है, क्योंकि ये किसी को तत्व और कुतत्व की खबर ही नहीं है राइट। अभी जो कुछ भी चल रहा है दिस इज द प्रॉब्लम। अभी तेरा पंच समाज की बात है, अब मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट श्वेतांबरा। श्वेतांबर में सिर्फ और सिर्फ यही है, मैं मतलब हम लोग जब मैं मुंबई में था तो मैं श्वेतांबर हॉस्टल में था, तो राइट वहां पर नीचे ही हॉस्टल के नीचे ही भगवान की प्रतिमा रखी हुई थी, वहीं पर ही पूजन होती थी। मतलब वहाँ ऐसा कुछ उन लोगों के कुछ ऐसा रहता नहीं है। और वो क्या बोलते हैं, तो मुझे क्या बताया उन्होंने कि हमको रोज भगवान को छूना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग एकदम भगवान के पास बैठते हैं, इफ यू लाइक नो, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, आप लोगों को पता होगा वैसे, बट यार देरासरों में वो लोग अपने जो उनके कपड़े होते हैं जिसमें उसमें भगवान के पास बैठते हैं एकदम पास में, और बोलते हैं वैसा बोलते हैं कि देखो सारे धर्मों में तो ऐसा है कि भगवान को नहीं छू सकते, लेकिन हमारे वितरागी भगवान है वो कभी छूने को मना नहीं करते, आप उनको बिल्कुल छूओ, और फिर पैर में छूओ, उनके हाथ में छूओ, उनके नाक कान को छूओ, तो अलग अलग जगह को थोड़ी थोड़ी देर तक छूना होता है, उससे उनको एनर्जी मिलती है, वो भगवान की एनर्जी को अपने पास लेते हैं राइट। दैट्स व्हाट टू ये करते हैं वो, और हर बार मतलब बार 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 ऐसे पहले उनका सिक्वेंस रहता है, पहले माथे पर छूना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको 10 बार करो या 12 बार करो, ऐसे अलग अलग होता है। तो एकदम भगवान की प्रतिमा के पास, उसलिए बहुत सारी प्रतिमाएं होती है मंदिरों में अलग अलग, क्योंकि प्रतिमा को लेकर बैठ जाते हैं राइट। तो वहां तो ये वाली बात ही है, हमारे यहाँ हमारे प्रोफेशन है 99% लोगों को पता नहीं है क्या हो रहा है, उनको वो लोग की लाइफ इसी में उलझी हुई है कि छोटे बाबा क्या कर रहे हैं और बड़े बाबा क्या करते हैं राइट। भगवान क्या दे देंगे, कौन से वाले भगवान देंगे, कहाँ पर ज्यादा तीर्थ है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर जाओगे तो ज्यादा मन लगता है, कौन से को भक्तामर पाठो कितनी बार, अखंड नमो का आगमन पर कितना चल रहा है, आपने चंद्र भगवान का 40 पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अच्छा आज अमृत धारा की बोली किसने ली, आज के प्रक्षाल में सबसे पहले प्रक्षाल कौन करेगा, ये वाली बातें अभी भी चलती है। एंड आप भी वहाँ पूजन में भी खड़े हो जाएंगे तो जब भगवान का प्रक्षाल हो रहा है तो सब सबसे बोलते चलो अब सब अपने हाथ ऊपर कर लो, तो अपने हाथ को नीचे करो, अब भगवान का प्रक्षाल हो रहा है, अब वो निर्मलम निर्मलीकरणम करेंगे तो अपने हाथ यहाँ पर माथे पर रखेंगे, तो सब कुछ बिल्कुल ही लोग इतने भोले भाले क्यों हैं, किसी को तत्व और कुतत्व की खबर नहीं है राइट। आपको भी कभी मौका मिले तो मतलब कभी कभी आप यदि कभी फंस जाए तो आप शांति विधान में ही बस बैठ जाइएगा, जो मित्र पक्ष में होते हैं वहां पर कुछ भी, वहां पर मतलब इसकी इम्पोर्टेंस ये कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो किसी के हाथ में किताब नहीं रहती, बट इम्पोर्टेंस इसकी कि आपके सामने एक मार्ग है, आपको वहां पर कहां पर बादाम जाके रखनी है, तो आप बादाम को गलत रख दोगे पूरे लोग देखने लगेंगे क्या हो गया, बट आपके हाथ में किताब ही नहीं और कोई मंत्र पढ़ रहा और इतनी स्पीड से पढ़ रहा है क्या हो रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं, बस भगवान के सामने एकदम जैसे चाहे तैसे मर्यादा के बिना आपको नृत्य करना है।
हेलो
गुड नाइट, नो प्रॉपर रहता है तो ये अमूल, ये मूल सा है, ये पागल फल है, ये जैसे बोल सकते हैं जैनिज्म की इलिटरेसी है। आप मूल तत्व के बारे में कुछ जानते नहीं है और जो बाहर का ढांचा भी नहीं था जैन दर्शन का, उसको भी आपने विस्तृत कर दिया, राइट। तो ये वाले अमूल दृष्टि, आई थिंक चार रंग हमारे हो गए। अब हम जब नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, होपफुली सम्यक दर्शन का हमारा, क्योंकि पूरा इसमें चरण है जो बाकी है श्रावक का, तो वो हम उसकी चर्चा करके फिर सम्यक ज्ञान की चौथी ढाल शुरू करेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप उसे पूछ सकते हैं।
उषा बेन तवरो,
हाँ, मैं जो आपने शुरुआत में बताया था ना, जो वो जरा फिर से स्पष्ट समझने मांगती हूँ, जो नौकर्म के उदय से जो हास्य होगा वो रति नाम कर्म का उदय से आप बोला बराबर, रति नाम कर्म के उदय से जो हास्य वो मोहनी के प्रकार हो गया, और फिर वहाँ आपने कुछ वेदनिया का बोला कि साता असाता जो हम लोग इष्ट अनिष्ट समझते हैं, और आपने कुछ ज्यादा बोला वो मुझे सुनने में नहीं आया बराबर, तो मैं समझने मांगती
हूँ। कौन कौन से, एक मोहनीय कर्म है, एक वेदनीय कर्म है, और एक नाम कर्म है, ठीक है। नाम कर्म सारी चीजों की संरचना करता है, नाम कर्म से हमारे आजू बाजू सारा शरीर वगैरह सब बनता है, ठीक है। तो आपके घर पे कार भी होगी, आपके घर में बिल्डिंग होगी है, आपके घर में टैबलेट होंगे, किचन है, खाने की बहुत सारी चीज है, तो इसकी जो संरचना हुई है ये नामकरण के हिसाब से जो कुछ भी हुई है, ठीक है। साथ साथ वेदनी जो आपकी अच्छी बुरी चीज है वो उससे आपका संयोग कराता है, ठीक है। आपके पास कार है वो तो आपको क्या बोलते हैं, अघातीय कर्म जन सामर्थ्य पुण्य के उदय आपको मिली, उस कार का संयोग कराया साता राइट नाउ, ठीक है। बट वो कार अच्छी कब लगेगी आपको, जब आपके साथ में रति मोहनीय कर्म का उदय होगा। कैसे, कि आपके पास कार है लाइक 1960s की, ठीक है, बहुत पुरानी कार है, आपकी फैमिली के फोर फादर से चली आ रही है, तो आपकी तो बहुत फेवरेट है क्योंकि आपको अटैचमेंट है मेरी पुरानी, मेरे फैमिली की कार है, तो लेगेसी से आ रही है, ठीक है। बट जो आपके शायद फैमिली में छोटे बच्चे हो, राइट, तो उनको सारे उनके फ्रेंड चलाते होंगे, तुम्हारे पास कैसी कार है, तुम्हारे तो वो वाली कार चलाते हैं वो लोग, क्या है, वो मजाक उड़ाते होंगे, वो बच्चे को शायद वो लगता हो कि यार कैसे मम्मी पापा का कितने सब झूठ है, एक नई कार नहीं ले पा रहे ये लोग, राइट। तो देखिए, कार इज एन ऑप्शन आपके लिए, वो कार आपके संयोग में और आपकी फैमिली में बाकी लोगों के संयोग में भी, बच्चों के संयोग में भी वो कार है, दोनों को उनके पुण्य या पाप के उदय जैसे भी मिली हो, कार मिली हुई है, मिली हुई है, राइट। लेकिन आपको अच्छी क्यों लग रही है और आपके बच्चे को अच्छी क्यों नहीं लग रही है, रीजन बीइंग आपके रति मोहिनी कर्म का उदय है, तो सेम कार आपको अच्छी लगती है, उसके रति मोहिनी कर्म का उदय है उसको अच्छी नहीं लगती, उसको बुरी लगती है। तो बाहर के संयोग को डिसाइड नहीं होता कि आपका क्या अच्छा चलेगा बुरा चलेगा पुण्योदय के पापोदय, अंतरंग परिणाम से होता है, अंतरंग परिणाम को गवर्न करने वाला, जब तक हमने तत्वज्ञान नहीं लिया और अपनी आत्मा का चार्ज नहीं लिया तब तक मोहनीय कर्म जैसा नशा करना चाहते हैं, तो मोहनीय कर्म की हीलिंग हमको करनी चाहिए। हम बाहर के संयोगों को घटाना बढ़ाना चाहते हैं, बट उससे तो साता साता का कुछ लेना देना ही नहीं है, वो अंतरंग परिणाम है।
अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो माने वेदनीय कर्म का जो साता साता वगैरह होता है वो तो जाने बाहर की बात हो गई, जो अपना अंदर से अंतरंग परिणाम जो वो मोहनी माने नौ कसाई वाला जो भी परिणाम होते हैं वो मोहनी के हिसाब से है।
हेलो,
हाँ
हेलो, आपकी आवाज फिर बंद हो गई। वेदनीय कर्म वो तो ठीक है, आपको सुख दुख की सामग्री का संयोग कराएगा, लेकिन उसमें सुख दुख की अनुभूति करनी कि नहीं करनी, ये आपका अंतरंग जो नो कषाय वाला मोहनीय कर्म है वो करा है।
हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू।
चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे पीपी ढाल को यहाँ से। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो कभी भी तो हम आप विचार करिएगा, इस समय करके चर्चाएं भी करेगा, स्वाध्याय भी करेगा। ठीक है, चलिए अभी जिनवाणी को भी कर जाए। निज निधि निज ने बताई है उसके लिए
जय जिनेन्द्र, थैंक यू अनुभव जी,
थैंक यू अनुभव जी, जय जिनेन्द्र।